नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कमी की है। नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी के साथ इसे 6.25% किया गया। लोकसभा में आम बजट 2025-26 पर चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू। मेले में 42 देशों के 600 कारीगर अपने शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। और 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज शाम के चीन के हॉर्बिन में शुरू होंगे। इन खेलों में भारत का 88 सदस्य दल हिस्सा लेगा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करीब 5 वर्ष बाद नीतिगत रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारत में वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से धन उधार लेते हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति MPC की 3 दिन की बैठक के बाद आज मुंबई में यह घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप स्थायी जमा सुविधा SDF की दर 6% और मार्जिनल स्थायी सुविधा MSF दर तथा बैंक दर 6.5% रहेंगी। बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने के लिए श्री मल्होत्रा ने यह भी घोषणा की है कि रिजर्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए एक विशेष इंटरनेट डोमेन bankofin लागू करेगा। RBI ने यह भी निर्णय लिया है कि इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह में वित्तीय निर्णय लेने और घरेलू बजट बनाने में महिलाओं की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा प्रमुख रेपो दर में 25 आधार अंकों की कमी करने के निर्णय के बाद बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लोकसभा में आज आम बजट 2025-26 पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के धर्मवीर गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट देश के सामने मौजूद कृषि चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा। कांग्रेस नेता ने कहा है कि देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है और ये देश के गरीबों और वंचितों के लिए बड़ी समस्या है। समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह ने भी बजट की आलोचना की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने LPG सिलेंडर की कीमतों के बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के राव राजेंद्र सिंह ने केंद्रीय बजट की सराहना की। श्री सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। सरकार ने कहा है कि वह जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर विशेष ध्यान दे रही है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के सक्रिय समर्थन से सरकार भारत विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठ चिकित्सा सेवा सुनिश्चित कर रही है। इससे पहले स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पिछले 30 वर्षों में मातृ मृत्यु दर की गिरावट दर वैश्विक स्तर पर 44% हो गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि पिछले वर्ष की समाप्ति तक 4,300 से अधिक कृषि उत्पादन संगठनों EPF के ई नाम पोर्टल के साथ पंजीकरण करवाए हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृषि मंत्री ने कहा है कि देशभर में अब तक 10,000 से अधिक FPO गठित किए गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हीरा उद्योग द्वारा अपने मानक और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वनियम पर जोर दिया है। राज्यसभा में पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत से प्रयोगशाला में बनाए गए हीरों की मांग बढ़ रही है और सरकार प्रमाणन और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सभी उपाय कर रही है। लोकसभा में आज DMK सांसद कनिमोझी ने शून्यकाल के दौरान श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करने का मुद्दा उठाया गया। इससे पहले कई सांसदों ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत में श्रीमती कनिमोझी ने कहा है कि श्रीलंका के अधिकारियों ने 97 मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उन्हें वापस लाया जाना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी आर एलिस वॉस ने बताया है कि 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के फॉर्म 17C सहित चुनाव दस्तावेजों की जांच कर ली गई है। सीईओ वॉस ने कहा है कि जांच प्रक्रिया के दौरान किसी भी उम्मीदवार ने कोई शिकायत नहीं की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम को आयोग और पुलिस अधिकारियों की कड़ी निगरानी में स्ट्रांग रूम में रखा गया है। मतगणना के लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। बिहार के एनडीए सांसदों ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा, जेडीयू और लोजपा आर के सांसदों ने श्री मोदी का अभिनंदन किया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह और चिराग पासवान भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा है कि उन्होंने बिहार से संबंधित बजट घोषणाओं के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज फरीदाबाद में 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस वर्ष के मेले के साझेदार राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा है। मेले में मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस सहित लगभग 42 देशों के लगभग 600 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर श्री शेखावत ने मेले को एकता और रचनात्मकता का प्रतीक बताया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय प्रयागराज में महाकुंभ में आज शाम एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर के जाने माने कलाकार संगीत, नृत्य और कला की शानदार प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे। त्रिवेणी संगम महाकुंभ में अब तक 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 10 फरवरी को त्रिवेणी संगम में पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्यासी कामेश्वर चौपाल की मृत्यु पर दुख प्रकट किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री चौपाल एक समर्पित राम भक्त थे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया। उपभोक्ता कार्य विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन NCH प्रणाली की स्थापना की है। इस प्रणाली शिकायतों का क्षेत्रवार विश्लेषण प्रदान करेगी। यह हेल्पलाइन communershelpline.gov.in वेबसाइट या टोल फ्री नंबर 1915 के जरिए सेवाओं या उत्पादों से संबंधित किसी भी तरह की शिकायतों के लिए उपलब्ध रहेगी। विभाग ने बताया है कि तकनीक संचालित नई प्रणाली का उद्देश्य उपभोक्ता मामलों, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में मुद्दों का तीव्र और कुशल समाधान को दुरुस्त बनाना है। नौवे एशियाई शीतकालीन खेल 2025 आज शाम चीन के हार्बिन में शुरू होंगे और इस महीने के 14 तारीख तक चलेंगे। खेलों की आयोजन समिति के उप महासचिव और मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि उद्घाटन समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार ने एशियाई शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। इन खेलों में भारत का 88 सदस्य दल हिस्सा लेगा जिनमें 59 एथलीट और 29 टीम अधिकारी शामिल है। और टेनिस में आज शाम चेन्नई ओपन चैलेंजर्स में पुरुष डबल्स में दो भारतीय जोड़ी अपने अपने सेमीफाइनल के मुकाबले खेलेंगे। पहले सेमीफाइनल में साकेत माइनेनी और राजकुमार रामनाथन की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त ताइवान के रेहो और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू क्रिस्टोफर रोमियोस की जोड़ी से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 पर शुरू हुआ। दूसरे सेमीफाइनल में अन्य भारतीय जोड़ी जीवन और विजय सुंदर प्रशांत जापानी जोड़ी शिंतारो मोशीजुकी और केतो उएसुगी के साथ खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार ब्याज दरों में कमी की है। लोकसभा में आज बजट 2025-26 पर चर्चा हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में शुरू। मेले में 42 देशों के 600 कारीगर अपने शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं और 9वें एशियाई शीतकालीन खेल आज शाम चीन के हॉर्बिन में शुरू होंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।